तो एवं जेला जो शुरुआत करते हैं उसके बाद उनको कह रहे हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो तो कौन सा शब्द की बात कह रहे हैं कि किस आज के इस साल के प्रवचन का ये अंतिम दिन है। तो आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, अंतिम दिन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगवान बुद्ध अपना 3 अनंत कल्पों तक पुण्य का संहार करके उसके बाद तपस्या त्याग करके बुद्ध को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद ये प्रज्ञा पारमिता के जो अभ्यास उनको अभ्यास लेना चाहिए। और रत्नावली में नागार्जुन ने भी कहा है कि और हम लोग स्वयं और दूसरे लोग भी भगवान बुद्धत्व को प्राप्त करना, जो अगर इस बात को मानते हैं, बुद्धत्व को मानते हैं, तो उसको प्रयास करने के लिए भगवान बुद्ध उनके मार्ग को बताया, ना कि कोई दूसरी चीज़। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, उनका सिद्धांत है, तो वो कर्म फल के सिद्धांत के बारे में बात कहते हैं, तो आधार और जो मार्ग और फल है उसके बारे में बात कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने 4 सत्यों के बारे में जब प्रवचन दिया तो कहा था कि ये दुख 8 सत्य है, तो उसके जो हमारा आधार है उसके बारे में व्याख्या की गई है। जैसे मार्ग सत्य के बारे में जब कहते हैं तो उस समय हमारा थोड़ा प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद ही उत्पन्न होता है। तो इसके साथ साथ हमेशा जो शून्यता है वो हमेशा होते ही रहते हैं, तो बिना शून्यता के हट करके कभी हो नहीं सकता है। जो निरोध की बात अगर की जाए तो निरोध समय शून्य जो शून्यता है उसकी विशेषता होती है। तो शून्यता को आधार बना करके बनाना ही चाहिए। जैसे कि उनकी विशेषता जो 4 सत्य हैं, पहले समय उनकी विशेषता के अनुसार विशेषता को साथ में जोड़ के कहा गया है कि दुख को जानिए, जो हमारे दुख है और जो हेतु है उसको जानना चाहिए, दुख को समझिए, हेतु को जानना चाहिए और जो हेतु है उसको नष्ट करना चाहिए। दुख को जानिए और हेतु को नष्ट करना चाहिए। अगर हेतु को नष्ट कर दिया जाए, पूर्णतः नष्ट कर दिया, तो दोबारा से वो उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर आप एक बार निरोध को प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने मार्ग को अभ्यास कर लिया, जान लिया, तो दोबारा से उस पर जानने या अभ्यास चलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें भगवान बुद्ध कोई आशीर्वाद ऐसी बात नहीं है, एक एक क्रम है, तो क्रम से चलना चाहिए। तो हेतु और तो बुद्धत्व को प्राप्त करने का प्रमुख जो हेतु है वो बोधिचित्त होता है, और उसके साथ साथ हमारे मूल जो जैसा कहा जाता है कि सूत्र अलंकार में कहा जाता है कि इसका जो जड़ है वो करुणा होती है। तो करुणा में भी महाकरुणा के व्यवस्था की बात की जाती है कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जब तक बुद्धत्व करुणा क्षम्भू नहीं हो, इंज क्षम्भू या करुणा महाकरुणा नहीं होगी, तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर जो करुणा की बात है वो किस प्रकार करना चाहिए, तो इस हिसाब से जो भी भवचक्र में लोग हैं और जो लोग दुखी हैं, दीन हैं, हीन हैं, तो उनके लिए दुख से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार का सोच हमारे अंदर होना चाहिए। जो भविष्य में वो नष्ट हो जाए, इस प्रकार की सोच होना चाहिए। तो इस जो दुख से नष्ट मुक्त हो जाए, तो दुख से मुक्त होने का खास कर बात है, जो हमारे संस्कार दुख हैं उससे दुख हो जाए इनके बारे में प्रार्थना करना चाहिए, तो उनके बारे में परिचय होना चाहिए, जान करना चाहिए। तो जब इनसे नष्ट होना चाहते हैं तो उससे पहले जो हमारी वैराग्य की भावना उत्पन्न होना चाहिए, और खुद में वैराग्य की भावना होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मेरा आत्म का स्वभाव होता है, आत्मग्राह की का क्लेश होता है, उसको नष्ट उससे मुक्त हो ऐसा सोचना चाहिए। तो जैसे लमरिम शैम्पू में कहा जाता है कि अगर अर्थ का मतलब है कि हमारे जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएं, जो संस्कार दुख से मुक्त होने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चित्त होता है वो वैराग्य का चित्त उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार के बोध चित्त में करुणा उत्पन्न होने के लिए अगर हेतु से के बारे में सोचें तो खास ये हमारे शून्यता का सिद्धांत वहाँ पर आ जाता है। जैसा क्योंकि हम सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी कल्पना भी करते हैं, और अंत में मैंने ऐसा सोचा है कि बुद्ध जो जिस बुद्ध चित्त का संवर है उसको मैं दूं, तो ये आसान है, उसको बहुत सरल है, क्योंकि रोज हम लोग उसको पाठ करते हैं, तो उसके बारे में तो बुद्ध चित्त उत्पाद करने के बारे में बताऊंगा। तो बोधचित्त जो है वो सारे के सारे अच्छे कर्मों का, सुभाषित कर्मों का एक मूल है, क्योंकि हम लोग अपने चित्त को बहुत ज़्यादा अपने आप को एकांकी समझ कर लेते हैं, इस वजह से दुख या भय इत्यादि पैदा होते हैं। अगर हम लोगों को देखते हैं जो लोग अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं की भावना रखते हैं, तो उनको बार बीमारी इत्यादि ज़्यादा होती हैं, और कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा अपने मन को खुला रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बुद्धचर्य अवतार में जैसा कहा जाता है कि इस दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, तो दूसरों के हित के लिए अगर सोचेंगे, दूसरों के बारे में अगर सोचेंगे तो ज़्यादा खुशी होती है, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, दूसरों के बारे में कुछ लोग ऊपर बारे में दूसरे बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपने देवता में या फिर ईश्वर में इत्यादि में श्रद्धा रखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग बौद्ध धर्म को भी देखो, उसी तरह से श्रीलंका बर्मा इत्यादि में भी देखो, सब वो लोग भी भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, तो फिर भी कुछ ऐसे गलत काम भी होते हैं कि हिंदू मुसलमान को मारना हत्या करना, ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरों का हित करना चाहिए, क्योंकि चाहे बौद्ध धर्म को माने या ना माने, लेकिन अपने मन को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अपने चित्त को मन को साफ रखने या शुद्ध रखने के लिए ये स्वतः से उत्पन्न होता है, हमारे मन में ये होता है। और बुद्ध चित्त उत्पन्न होने के 2 तरीके बताए गए, एक तो 6 प्रकार के हेतु और परिवर्तन करने के साथ भी कहे गए, 2 विधियाँ बताई गई हैं, और रत्नावली इत्यादि ग्रंथों में देखने को मिलता है कि जो हेतु है उनके बारे में सोचना चाहिए, केवल श्रद्धा या विश्वास करते रहें ऐसी बात नहीं है। जैसे अर्हत हो उसके बाद भी अपने आप को मानते अपने आप को तो मैं तो देता ही, उसके अतिरिक्त ही लेकिन दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्म की बात होती है, स्वयं की बात होती है, आसक्ति की बात होती है, तो जबकि अर्हत लोग उनके अंदर आसक्ति नहीं होती है, तो इसलिए शून्यता इनके बारे में सोचना चाहिए बड़ी। तो दूसरों के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन उत्पन्न होगा तो जो आत्म केंद्रित मन है वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। जो नागार्जुन ने भी जो बोधचित्त शून्यता और सम्यक सिद्धांत उन्होंने कहा है कि ये बुद्धत्व प्राप्त करने के प्रमुख कारण हैं। चाहे जो तंत्र का अभ्यास करने वाले लोग हैं, अगर ये चीज़ें बातें ना हो तो फिर चाहे शून्यता का अभ्यास अगर करते हैं तो देवता इत्यादि के ऊपर करते हैं तो शून्यता को नहीं जानेंगे तो फिर उसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो बिना शून्यता को लिए और अभ्यास करें तो शायद अभ्यास नहीं हो सकता। हालांकि जो तंत्र है काफ़ी गंभीर होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ शून्यता का सिद्धांत होना चाहिए। बिना शून्यता को ध्यान रखते हुए अगर शून्यता का अभ्यास करते हैं और तंत्र का अभ्यास करते हैं तो हिंदुओं के जो तंत्र उसके समान हो गए। देवपोमा या डूंजू इत्यादि चीज़ें वो हिंदुओं में भी देखने को मिलता है। जो हिंदुओं के तंत्र और बौद्ध धर्मों के जो तंत्र में अंतर है उसमें खासकर शून्यता को आधार पर अंतर किया जाता है और शून्यता के अनुसार ही बोध चित्त को प्राप्त किया जाता है, तो इस पर अंतर किया जाता है। और इसको अच्छी तरह से व्याख्या के रूप में समझना चाहते हैं तो बोधचर्या अवतार को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोधचर्या अवतार 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई, तब से लेकर के आज दिन तक आज तक बुद्ध चित्त उत्पन्न करने के लिए न तो पूर्व में उत्पन्न हुई न और अभी समय में उत्पन्न है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जो बुद्ध चित्त है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बुद्ध चित्तोत्पाद बाद में बताऊंगा, तो अभी जो कल जहाँ पर रुका गया वहाँ से आगे का पाठ करेंगे। तो इसके बाद कल का आज से शुरुआत हो, चौथा दो है जो हमारे नरक इसके बारे में पाठ होता हुआ। कि नरक किस प्रकार से होता है, उसके परेशानियाँ कैसे होती हैं उनके बारे में यहाँ पाठ हो रहा है। Yeah. फिर दूसरी बात, जो जानवर हैं उनके दुख के बारे में सोचना। जो कि जल में रहने वाले हों, जैसे मछलियां या मगरमच्छ, कछुए इत्यादि के जो दुख हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं और कितने खतरनाक दुख होते हैं, उनके बारे में व्याख्या हो रही है। तो आजकल के अगर पानी की बात की जाए तो उसके हिसाब से वो पुराने समय की अगर बात की जाए तो अलग बात हो बैठती है। जैसे हम लोग जानवरों की जो भी दुख हैं उनको तो हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से हैं, एक दूसरे का हत्या करना, एक दूसरे को मारना, जैसे पहाड़ों में पर इत्यादि में रहने वाले जानवर, इनका दुखों को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे जीव हों चाहे बड़े, आपस में झगड़ा, क्रोध या फिर आपस में लड़ाई करने तैयार को हम लोग देखते रहते हैं। फिर आगे वाले जो प्यास, भूख प्यास के दुख, कि किस प्रकार से भूख प्यास से परेशान रहते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि हाथ पैर भी नहीं हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं और भूख प्यास से पर पीड़ित होते हैं, तो इस प्रकार दुख होते हैं। उसके अत्याद जो गीदड़ हैं उनके द्वारा हत्या करने का भी डर रहता है, जान जाने की भी डर रहता है, तो आधे दुख होते हैं। तो पानी पीने चाहना भी चाहें लेकिन फिर भी डर की वजह से भी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुर्बल टाइप के देखने को मिलते हैं, तो इनको तो हम देख सकते हैं कि किस कैसे दुख हैं, इन जानवरों में भी कितने प्रकार के दुख होते हैं। फिर दूसरी बात, जो कार इत्यादि में लगाना, जैसे घोड़े होते हैं, खच्चर, और याकूब इत्यादि को पूरा दिन काम में लगाए रहते हैं और उनके पीठ पर इत्यादि पर सामान लाद दिया जाता है और दुखी रहते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं, जो एक उसको देखिए आप, गधे को देखिए कि कितना सामान लाद दिया जाते हैं, फिर भी वो बेचारा काम करता रहता है, दुखों को झेलता रहता है। उनके पीछे में घाव इत्यादि बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, परेशान रहता है, फिर भी अपने जो भी मालिक के द्वारा काम दिया जाता है उसको करते हैं। उसके बाद मोती इत्यादि के अर्थ के लिए जो मछलियां हैं इत्यादि की हत्या की जाती है कि उससे हमें रत्न इत्यादि की प्राप्ति हो सके, जिससे कि अपना व्यवसाय इत्यादि कर सकें। और कुछ लोग तो उनके जो सिंह होते हैं, तो सिंह की हत्या, सिंह के अर्थ के लिए, सिंह के लिए भी उनकी हत्या करते हैं, कुछ खाल के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, या फिर खून इत्यादि के लिए भी दूसरे जानवरों की हत्या करते रहते हैं। तो इनके जानवरों को जो दुख है उनको, उनसे हम समझ सकते हैं। या तो खुद हत्या करते हैं, दूसरे द्वारा उनकी हत्या करा दी जाती है। जैसे कि भेड़ या बकरी के उनके पैरों हाथों को बांध करके, तिब्बत में कुछ ऐसे क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है, हिमालय क्षेत्रों में ऐसा देता है, जो बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते समय इस समय मंत्र का पाठ करते हैं। बहुत लोग हैं जो मंत्र पढ़ते हैं और बलि चढ़ाते हैं। और तिब्बत में भी ऐसे में भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिंदा भेड़ को कहीं रखकर कौन चला देते हैं। अगर जो हिंदू हैं, जो बौद्ध नहीं हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो काम करते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन हम बौद्ध होने के नाते हमारा उनसे बोलने का कर्तव्य बनता है। कभी ऐसा भी करते हैं कि पूरा अट्ठावन 59 की बात है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जानवरों की खाल उतार देते हैं, खाल पूरा खींच लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर बेचारे जानवर ऐसे दुखों में परेशान होकर इधर उधर भटकते हैं। तो इस प्रकार के लोग काम करते हैं, जब साल उनकी खाल उतार लेते फिर हंसते हैं, तो इस प्रकार के उनको दुख देते हैं। इस प्रकार के जो दुख हैं, बहुत ज्यादा भयंकर दुख उनको दिए जाते हैं। जैसे गरुड़ तो जिस तरह से हम कहते हैं वो है कि नहीं कह नहीं सकते। इंडोनेशिया में तो वहाँ पर एक गरुड़ा, एक जैसा हम लोग शुतुरमुर्ग को कहते हैं उसी तरह से वहाँ पर उसी तरह से एक गरुड़ा को कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे गरुड़ा को, और क्योंकि अब गरुड़ा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उस गरुड़ा को एक कल्पना शायद की जाती है, तो जो सत्यता क्या उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इंडोनेशिया का जो जहाज है उसका नाम भी गरुड़ा नाम दे दिया है। एक 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 बिच्छू के बारे में बात कर रहे हैं, वो छाता लेकर के जो चलते थे, मरने के बाद वो भूत में पैदा हुए। और ठिकाने से मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहा। तो ठिकाने पर जिस समय उस समय नूरबलिंगका के समय की बात है, मैं वहाँ नूरबलिंगका में था। तो और ठिकाने पर उनसे मिलने के लिए आए। टीचर पास एक दीपक था, तो उनके पास सामने वो नहीं जा पा रहे हैं, जो बुद्ध के रूप में पैदा हो गए थे तो उनके सामने नहीं जा पा रहे थे, तो शायद वो फर्सी के रूप में रहे थे, तो उनके पास जा नहीं पा रहे थे। तो फिर दूसरे के रूप शरीर में प्रवत आ गए और कहा मैं फलाना हूँ, और ठिकाने रिम्पोचे के पास मुझे ले चलिए। तो ठिकाने रिम्पोचे को केवल अंधेरे में केवल रुक रहे थे, जहाँ प्रकाश था वहाँ पर बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे। फिर वे धीरे धीरे उनके पास आए, फिर उन्होंने तो आप इस तरह से पैदा हुए तो आप क्यों इस प्रकार, तो इसकी वजह क्या है। तो वहाँ पे चाहें कि एक मूर्ति है, और उस मूर्ति को ज़्यादा पसंद किया। एक एक छोटा सा जूता बनाया और उनके उनको दिया, तो ऐसा तो हमेशा उनको देखभाल करना चाहिए, देखभाल करने की बात है। तो उसके बाद केवल तो इस प्रकार के जो काम है, तो वास्तविक घटना घटित हुई है, तो वहाँ पर ऐसी घटना देखने को मिली और ये घटना हुई है। तो दोगेल को तो जो देखेल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर भूत के रूप में या भूत या प्रेत में जन्म होने का बहुत चांस होता है, बहुत ज़्यादा। अगर इस दुनिया में देखेंगे बहुत सारे कीड़ा मकोड़े जो हैं, तो बहुत सारे हैं जो कीड़ा मकोड़े को देखा जाए तो उनको देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और उनके अपने अपने उनके अपने अपने शरीर वो या फिर चलने का तरीका या अपने जीवन निर्वाह करने का अपना अपना तरीका होता है। तो इनको देख करके या तो ऐसा लगता है कि कर्म फल को बारे में सोचना पड़ता है या फिर जो ईश्वर है उनके बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि दुनिया के जो भी जो हमारे भौतिक जो अड़ु हैं या उनकी वजह से या सर्दी गर्मी की वजह से बहुत सारे उनकी वजह से पैदा हो जाते हैं तो लेकिन उनको अगर और गंभीरता से उनकी अगर व्याख्या की जाए तो कर्म फल के अतिरिक्त उनकी व्याख्या कर पाना मुश्किल होगा। या फिर जो गैलेक्सी या फिर इस गैलेक्सी में के अनुसार भी देखा जाए तो कितने ज़्यादा तारे या फिर और तारे मंडल देखने को मिलते हैं, तो वो हमारी आँख ऐसी सामान्य आँखों से तो नहीं देखा जा सकता, दूरबीन या अलग चीज़ों से देखा जा सकता है। तो वैज्ञानिक लोग आज जो ब्रह्मांड की जो व्याख्या करते हैं तो उसके तरफ थोड़ी श्रद्धा जैसी उत्पन्न हो रही है, तो बिना हेतुगत उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आकाशगंगा इत्यादि की बातें कही जाती हैं तो उस प्रकार के जो जितनी प्रबल शक्ति है तो उसमें जो उत्पन्न या फिर जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसमें उसके पदार्थ होते हैं, उनके शक्ति की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो वो एक जो रूप होता है उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। तो इसके जहाँ से कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो नक्षत्र इत्यादि है उनके अनंत हैं, तो इनको अगर व्याख्या की जाती करने की अगर संभावना है तो कर्म फल के अनुसार किया जा सकता है, या फिर कर्म फल को न माने तो फिर जो कर्ता है ईश्वर ने उसने बनाया ऐसा माना पड़ता है। तो इनके बारे में सोचना चाहिए। तो जानवर हैं या फिर जो बहुत सारे इनके जानवर इतना परीक्षण तो हुआ और भी अगर परीक्षण हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या होती है। तो उनकी जो उम्र है उनकी कितना होना चाहिए, उम्र की सीमा आयु की सीमा कितनी होती है, और फिर जानवर लोक में पैदा होने की वजह क्या होती है। तो इसमें खास कर कहा जा के जानवर में लोक में जन्म लेने की हमारी वजह जो हमारे 10 प्रकार के कुशल कर्म हैं कर्म होते हैं उनको 10 प्रकार के कुशल कर्मों को करने की वजह से जानवर लोगों को लोक में पैदा होना पड़ता है। और फिर जो धर्म और धर्म के जो व्याख्या करता उनके प्रति सम्मान इत्यादि न करने की वजह से भी हमें अकुशल कर्म की काम अकुशल कर्म को करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुत्ते के रूप में जन्म लेना, गाय बैल के रूप में जन्म लेना, कबूतर इत्यादि सर्प इत्यादि के रूप में जन्म लेना, ऐसे तो ये जानवर लोग का जन्म होता है। और फिर उनके जानवरों में भूख प्यास के बहुत दुख होते हैं। अगर अगर मैं की भावना को बहुत बार अगर भावना करें और उसके अतिरिक्त बोधचित्त की एक बार अगर भावना करें तो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बोधचित्त के बारे में सोचेंगे तो वो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम सभी सत्तों के हित को ध्यान में रखते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की सोच रखे अगर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप ये सोचते रहें कि मैं नरक में पैदा हो जाऊंगा, ऐसे पौधा हो जाऊँगा, इस प्रकार से अगर सोचते रहें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। ये अपने हित की बात की जाती है, जो ये शरण गमन की बात की जाती, शरण गमन के रूप में बुद्धचित्त के समय जब शरण गमन की व्याख्या करते हैं तो उस समय बुद्धचित्त के बारे में सोचना चाहिए। केवल शब्द के रूप में कहते ना तो उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। और जब बुद्धचित्त की बात करें तो अगर उस समय हमारे मन में अगर थोड़ा परिवर्तन होता है तो तब बढ़िया बात होती है, अच्छी बात होती है। और बोधचित्त अच्छा उत्पन्न होने के लिए अगर हमारे अंदर शून्यता का सिद्धांत नहीं होता है, जैसा कि मैंने कल कहा, क्योंकि सभी सत्वों को बुद्ध की भूमि पर ले जाना है, तो उसके लिए बोधचित्त उत्पन्न करना, अगर बोधचित्त उत्पन्न नहीं करते हैं तो नहीं हो सकता है। अगर लोगों को कहें कि कोई पूछे कि बोधचित्त कहाँ है वो या बोध भूमि कहाँ है, तो आप ऐसे ही कहते रहें सदा कि कल भगवान का समय ऐसा है, तो शायद उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो खम प्रदेश के लोग हैं वो भी मानते हैं कि बुद्ध हैं, तो वो एकदम कसम से भगवान बुद्ध ऐसी बात कहते हैं, तो ऐसा कहने से नहीं हो सकता है। कहने भर से या कसम देने से सिद्ध हो जाए ऐसी बात नहीं है। तो आज की दुनिया में बौद्ध धर्म को भाग जो जो नहीं मानते हैं वो काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि उनको जब देखते हैं तो उससे हमें बहुत सारे कार्य देखने को मिलते हैं। तो नालंदा से जो परंपरा के विद्वानों को देखो तो कितना उनको जो प्रज्ञा बढ़ी है, तो खासकर जो तीर्थांकित थे, जो बौद्ध लोग नहीं थे, हिंदू वाले सिद्धांतित थे, सिद्धांत के लोग जो विद्वान, उनसे तर्क वितर्क करने के बाद फायदा हुआ। अगर बौद्ध धर्म में विरोध करने वाले लोग न होते तो केवल ऐसा ही मानते ना, जैसा तो साल नालंदा इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता था अगर उसको विरोध करने वाले लोग न होते। तो इसलिए भगवान अर्थात बोधि प्राप्त करने के बुद्धत्व भूमि है, बुद्धत्व है, उसको जानने के लिए बार बार सोचना चाहिए, बड़ा अभ्यास करना चाहिए। इसको जिसको प्राप्त करना जानना चाहते हैं तो उसको ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने का मतलब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो तो मैंने कल भी बताया था, पहले भी कहा कि इनको पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर समर रिम्पोचे बातें मिले तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। तो मैं इसमें कहा गया तो मुझे तो जो कह रहे हैं साथ मुझे थोड़ा मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं बैठ रहा है। जब बुद्धत्व को जान करके इसको प्राप्त करने के लिए जब मन उत्पन्न होता है तब उस समय एकदम तुरंत हमारे अंदर विचार उत्पन्न होता है कि अगर हमें मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इतने जैसे ही अपने इसको बारे में समझें कि ये जो मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है, तो एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो इस प्रकार का शरीर मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, और मेरा सोच विचार है, लेकिन सोच विचार जो विद्वान लोग जिस तरह सोचते हैं उस तरह से मैं सोच रखता हूँ। तो जो विद्वान लोग जिस तरह सोचते हैं, प्रज्ञा के द्वारा सोच विचार करते हैं, तो प्रज्ञा को प्रमुख मानने वाले लोग उनके अनुसार मानेंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर बहुत संकुचित विचारधारा के द्वारा सोच विचार करेंगे तो उस समय हमारा कितनी अच्छी सोच विचार उसके बारे में जानना चाहिए, और फिर उसके बाद जो दूसरों के हित के लिए जब सोच रहे हैं उस समय विचार करें तो कितना फ़ायदा उसके बाद सोचना चाहिए। इसके बाद जो ईदा के उसके दुख के बारे में सोचना चाहिए, अब धर्म कोष को अगर जैसा कहा गया उसी शब्द से अगर उनको मान लिया जाए तो एक यहाँ पर दुविधा की बात बैठती है। जैसा कहा जाता है कि बोध के लगभग 3000 या ऐसे योजन के नीचे जाओ, 3000 योजन नीचे जाए तो वहाँ नरक है, तो अगर इस पर दूर जाए तो लगभग अमेरिका पहुंच जाएंगे, ऐसी बात है। तो जो यहाँ पर बैठे हुए बिछलो जो सुमेरु पर्वत इत्यादि को मानते हैं, तो आप तो स्पेस में आप जाइए ढूंढने के लिए, जाइए कहाँ मिलेगा। तो सोचने का अलग अलग विचार है, तो फिर आप जहाँ पर रीरअप या उसकी बात करते तो उसको ढूंढने के लिए देख कोशिश करना चाहिए, ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ ग्रंथों में कहा गया कि नरक की दूरी इतनी है या फिर फलां की जगह इतनी दूरी है, जैसा यहाँ जिक्र किया गया ईदा जो है उनका स्थान वैशाली के नीचे लगभग 500 योजन जाए तो उनका घर मिलेगा या उनका स्थान देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। जो असुर लोग इत्यादि हैं तो हैं, ऐसी बात नहीं, उनके देखने को मिलते हैं। और जो दुख इनके ईदक के भी दुखों की बात की जाए, प्रेत के दुख की भी बात अगर की जाए तो इन्हें भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि के बहुत सारे दुख होते हैं। जैसे जो फर्शी में रहने वाले मृत्यु से अगला जन्म न मिले तब तक जो जहाँ पर स्थिति में रहते हैं, जब धुआं जब निकलता है तो वो सारे जो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था, तो केवल रिंपोचे ने कहा तो उसमें आग में धुआं को खाने वाले ऐसे प्राणी दिखाई दिए थे कि, तो ये उन्होंने अपनी आँख से देखा कि ऐसे कोई प्राणी होते हैं जो कि धुएं को खाते, सुगंध को खाने वाले प्राणी होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे खाने या पीने की चीज़ें हैं होती हैं, तो उसमें अंदर के जो गंदगी दिखाई पड़ना या फिर उनको न खा पाना, इतनी बाधाएं इसके इन दुखों के बारे में जो प्रेत होते हैं जो खाना पीना देखते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, उनकी बाधाएं होती हैं, तो ये सब उनके कर्म की वजह से होते हैं। तो उनका इतना पतला गला होता है कि एक सुई की नोक के बराबर, और उनका पेट काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे खाना इत्यादि हो फिर भी उनके अंदर नहीं जाता है, इस प्रकार के दुख होते हैं। और जैसे ही खाते हैं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे दुख। फिर उसके बाद सर्दी और गर्मी के दुख, और फिर उनके थक जाने के दुख। फिर उसके बाद जो डर या भय, उसके दुख। इतने जो प्रेत के दुख हैं उनके बारे में व्याख्या की जा रही है कि विभिन्न प्रकार के उनके दुख होते हैं। फिर उसके बाद उनके उम्र के बारे में, तो उनके एक तो वर्ष सैकड़ों वर्षों के दीर्घ लंबी उम्र होती है, तो ऐसे समय तक उनको दुख भोगना पड़ता है। और ऐसे दुखों में उनको खाने पीने के दुख, भूख प्यास के दुखों से गुजरना पड़ता है। और तो ऐसा होता है कि उनके पेट में आग जैसी उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद गले में बहुत जलन इत्यादि होना। और फिर आखिर हम प्रेत योनि में जन्म क्यों लेते हैं इसकी वजह? तो ये तभी होता है जब हम 10 प्रकार के कुशल कर्मों को करते हैं, या फिर लालच करना, किसी को कुछ अपने या दान इत्यादि न देना, अपने हाथ को बहुत ज़्यादा बांध कर रखना, किसी को दान न देना, कुछ खाना इत्यादि न, इस वजह से जन्म मिलता है। तो इस प्रकार के अनेक दुखों को देखने को मिलते हैं। कि जो हमारे प्रेत, जो प्रेत योनि में जन्म लेने की वजह हमारे अकुशल कर्म ही होते हैं, अकुशल कर्मों की वजह से हम प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। और दूसरे जो हमारे भिक्षु लोग हैं होते हैं, उनके अगर उनके अधिकार को अगर ले लोगे, छीन लोगे, या उनको जो दान इत्यादि देना चाहिए नहीं देते हैं, तब भी आपको नरक प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा जिक्र किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध के समय जब वो अपने भिक्षा टन के लिए गए थे, तो एक औरत ने कि जहाँ पर उनको जिसमें उनके उनके पिंड पात्र में गलत खारा पानी डाल दिया था या गंदा पानी उनमें डाल दिया था, दान के रूप में दिया था, तो इसकी वजह से वो महिला 500 कल्प जन्मों तक प्रेत की योनि में पैदा हुई थी। दूसरा, अगर दूसरे फिर इसकी और वजह ये भी होते हैं कि अगर दूसरे से हम ईर्ष्या करेंगे और ईर्ष्या के दौरान हम गाली इत्यादि देंगे, तब भी हमें प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस ग्रंथ को अगर सावधानी से पढ़ा जाए तो इसमें प्रेत के या फिर जो निम्न योनि है उनके कितने प्रकार के, कितने भयंकर दुख हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो फिर इसके बाद हमें इन दुखों से मतलब बचना चाहते हैं तो जो शरण हैं, जो सबसे शरण हैं, जो हमारे तीन शरण, उनके बारे में जानना चाहिए और उनकी शरण जाना चाहिए। तो अधम पुरुष के समय जो शरण गमन होता है तो खासकर वो दुख को मान करके शरण में जाते हैं, और जो दुख और दुख जो मध्यम पुरुष होते हैं वो जो संस्कार दुख हैं उनको मानते हुए शरण गमन करते हैं। और जो अधम पुरुष होते हैं जो अबोध हैं तो वो लोग भी अपने भय डर या भय से मुक्त होने के लिए अपने अपने शरण गमन के स्थान में शरण लेते हैं। फिर यहाँ इस समय जो शरण अपने अपने शरण के बारे में व्याख्यान किया जा रहा है कि कहाँ पर शरण लेना चाहिए, कि किन के अंदर शरण लेना चाहिए जिससे कि हम दुखों से मुक्त हो सकें। इसको आज जहाँ पर सरल है उनकी तीन विशेषता होना चाहिए। तो पहले तो जिसकी सरल जा रहा उसके बारे में जाने, उसके ज्ञान के बारे में जाना चाहिए और उनकी विशेषताएं उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए सड़ जाने का मतलब है जो भाव चक्र है तो उससे किस प्रकार से बचा जा सके। तो भगवान और बौद्ध लोगों की अगर सड़ की बात की जाए तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सड़ जाया जाता है। जैसे जैसे चतुशतक या फिर रत्नावली में कहा गया है कि उसमें हमारा प्रमुख शरण लेने का उद्देश्य बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए होता है। और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अगर मनुष्य रूपी ये शरीर नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुष्य का शरीर लेना ही होगा। और मनुष्य को शरीर लेने के लिए जो हमारे 10 कुशल कर्म हैं उनको करने की आवश्यकता होती है। और तो इसलिए हमारे इस प्रकार के नरक से बचने के लिए हमारे बुद्धत्व जो हमारे तीन रत्न हैं वो हमें बचा सकते हैं। और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तो हमारा जो निरोध मार्ग है ज्ञान को जानना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास करना चाहिए। पहले एक दिन अभ्यास करना है, 2 दिन अभ्यास करना चाहिए। तो क्रम से अभ्यास किया जाए तभी संभव हो सकता है, क्योंकि खासकर हमारी जो आत्मग्रहता है उसको जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम हमारे क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे नरक इत्यादि में पैदा होने के बिना पुण्य कर्म की वजह से वहाँ पर कीते हैं पैदा होते हैं। और जब अगर जैसे ही हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न हो तो उसी समय हमारे 10 प्रकार का अकुशल कर्म हैं वो भी हो जाते हैं। तो जैसे ही जो हमारी आत्मा उसको क्लास आत्मा रूपी जो आत्मा को मानने वाला जो मन है उसको रोकना चाहिए। और आत्मा को नकारने वाला सिद्धांत सिर्फ बौद्ध धर्म ही है, उसके अतिरिक्त नहीं है। तो इसलिए चतुशतक ग्रंथ है उसका श्लोक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा ग्रह है उसको नष्ट करने के लिए निरात्मा का भाव निरात के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में अभ्यास करना चाहिए। तो इसको नष्ट करने के लिए अनात्म को मानने वाला केवल ही बौद्ध धर्म ही है, जो कि भगवान और कोई नहीं है। केवल भगवान बुद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई शरण नहीं है जो कि हमें बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, या फिर जो हमारे संघ है उस शरण के अतिरिक्त दूसरा कोई शरण नहीं है जो बुद्धत्व को प्राप्त हो सके। तो उसको बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त दूसरा कोई क्रय नहीं है। अगर आत्मा को मानते हुए भी अगर फिर भी हम श्री नामचिन का अभ्यास करेंगे तो फिर हम फिर भी नरक में पैदा होंगे, ऐसा हो सकता है। तो थोड़े थोड़े तो जो क्लेश हैं, अज्ञानता हैं, जो इंद्रियों के द्वारा अज्ञानता उत्पन्न होती है, उनको थोड़ा सा नष्ट किया जा सकता है। तो खासकर जो नित्यता का सिद्धांत है वो सूत्रों में भी कहा जा ग्रंथ सूत्रों में उसकी व्याख्या की गई है। तो हमारी प्रेरणा उसके अनुसार तो थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। के अगर बात की जाए तो वो लोग भी अपने अपने शरण की बातें में बात करते हैं, लेकिन जो तरीका क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से शरण की बात की जाती है। और जो मार्ग सत्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के अगर नष्ट दुखों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वैद्य के रूप में बुद्ध को मानना चाहिए, और उसकी जो प्रयास है उसको जो धर्म है उसको प्रयास के रूप में मानना चाहिए। और जो हमारे संघ है उसको मदद करने वाले लोगों को समाज समझना चाहिए। फिर दूसरी बात, इसकी जो विशेषताएं हैं सरल गमन के बाद उसकी विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। के बोध चित्त हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके बारे में सोच विचार करने चाहिए। तो शुद्ध मन से अपने अपने जो भी बुद्ध हैं, चाहे श्रावक श्रावक बुद्ध हों, पच्चेक बुद्ध हैं, बोध चित्त हों, उनके उनके ज्ञान के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद जो प्रयोग मार्ग है और संवर्ग मार्ग, उनके गुण गुण के बारे में पाठ हो रहा है। तो उसके जो प्रयोग मार्ग है उसमें भी चार प्रकार के भाग हैं, भाग होते हैं। तो इनके बारे में माध्यमिक दर्शन को मिला करके सोच विचार करना चाहिए। और जो बुद्ध लोग होते हैं, अर्हत लोग होते हैं, उनके गुण के बारे में व्याख्या। तो सूत्रों में भगवान बुद्ध और श्रावक इनके गुणों के बारे में व्याख्या की जा रही है। कुछ सूत्रों में ऐसा जिक्र किया जाता है कि जो श्रावक होते हैं उनमें करुणा नहीं होती है, यहाँ करुणा नहीं का मतलब करुणा क्षम्प जो महाकरुणा उसके बात की जा रही है। तो जो भूमि 10 भूमि है तो प्रत्येक भूमि हर एक भूमि कितने कितने प्रकार के गुण है उनकी व्याख्या। तो प्रत्येक भूमि पर 10-10 जो प्रज्ञा जो पारमिता है उनका भी अभ्यास होता है।
Thank you.
तीसरा अध्याय यहाँ से जो बुद्ध हैं उनकी गुण के बारे में, बुद्ध के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता, उनके बारे में यहाँ पाठ हो रहा है। जैसे उनके शरीर के बारे में अगर व्याख्या की जाए तो तो शरीर के 32 प्रकार के बड़े लक्षण और 80 प्रकार छोटे लक्षण होते हैं, जैसा कि उनके पैरों में, हाथ और पैरों में चक्र है इत्यादि प्रकार के बात, और 32 प्रकार लक्षण होते हैं। फिर उनके बाद उनके वचन, उनके गुण, वचन के गुण कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में पाठ जो उन्होंने धर्म दिया उनके बारे में, जो बोध चित्त है उसके बारे में शायद दोपहर के सत्र के बाद करेंगे।
Thank you.
इसके बाद भगवान बुद्ध की जो प्रेम है, प्रेम का उन का के जो गुण हैं उनके बारे में, कि बुद्ध का प्रेम यह स्नेह सभी प्राणियों के लिए अथाह होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनके सब के लिए समान होता है। तो उनके उनके ज्ञान के जो गुण हैं उनके बारे में पाठ होता हुआ, तो भगवान बुद्ध का ऐसा भी कोई समय नहीं होता है कि जो जो दुर्लभ प्राणी हैं या जो बेचारे हैं उनको न जान पाते हैं, वो सबको जान लेते हैं। फिर उसके बाद जो दुख, फिर अगली बार उनके जो कार्य हैं, तो कार्य के क्या गुण हैं, विशेषता क्या उनके बारे में, तो भगवान बुद्ध जितने के जितने लोग हैं सत्य, तो उनको एक बार में देख सकते हैं, एक साथ में सारे को हित कर सकते हैं। ये चाय है वो किस प्रकार, ये दवा है तो कोई, ये जो मेरे हाथ में वो दवा है तो कोई, तो इसमें कोई स्वाद या अत्या तो नहीं है। जापान में एक, तो वहाँ पर जब चाय पीते हैं तो एक आयोजन करते हैं तो उनसे पूछे जाते हैं स्वादिष्ट है तो कहते हैं कि स्वादिष्ट के बारे में मत पूछो, तो एक दवा के रूप में इसे समझना चाहिए। फिर इसमें जो दूसरों का हित करते समय जो बाधाएं होती हैं उनके बारे में, तो हमारे जो जो गे आवर और क्लेश आवर हैं इनको जब जैसे ही हम वो नष्ट कर देंगे तो हम दूसरों का हित स्वतः करने लग जाते हैं। तो तंत्र के अनुसार जब उच्च भूमि को प्राप्त करने के लिए जो हमारी इच्छा तो है वो दो प्रकार के जो प्रकार के क्लेश हैं उनको नष्ट करना चाहिए। और कर्म का जो कार्य है उन्हें कभी कर्म नहीं टूटता। खासकर हमारे जो चित्त है उसका चित्त नष्ट नहीं होता, उसकी संतति बनी रहती है, तो वो हमेशा निरंतर बिना उसके क्रम टूटे चलते रहते हैं। फिर उसके जो उनके जो कार्य हैं उनमें विभेद करना, जो करता है उनके खुद के में कर्म होना, और जहाँ पर कार्य किया जा रहा है तो दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो इसमें भी कह रहे हैं कि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, धर्म को अध्याय अच्छे से करना चाहिए। अगर खुद अपने चित्त को बस में नहीं करेंगे तो दूसरे को भी आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है। तो भगवान बुद्ध के वचनों में इतनी शक्ति होती है कि अंगुलमाल जैसे लोग भी बाद में बुद्ध के शरण में आकर के अर्हत पद को प्राप्त हुए थे। Thank you. चैप्टर इसमें जिक्र किया जाता है कि एक बार भगवान बुद्ध एक बीमार भिक्षु की मदद करने के लिए गए थे और एक नर्स के जैसे के समान उनकी सेवा की थी। वो सेवा भाव उनके अंदर महाकरुणा पैदा करने के तत्पश्चात ही उत्पन्न हुई थी, ऐसा ऐसे जो कहानी या फिर ग्रंथों में जिक्र होता है। अभी यहाँ पर रुकते हैं।
Oh, yeah.